समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। समय है 7:30 और आज की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आज सवेरे, और आज के अंत में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, स्वागत है आपका भी।
Namaskar and hello Nikhil. We welcome all our listeners to join in for another brand new edition of Aaj Savere. So friends, stay with us and enjoy the program. For starters, Nikhil, we have some news headlines for them.
Bilkul. गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today. On the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the governor Vishwanath Arlekar had demanded from them.
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई।
The Directorate General of Training, DGT, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship will host a high-level industry consultation today at the National Skill Training Institute, Kanpur, Uttar Pradesh. The ministry said that the event marks a pivotal moment in India's pursuit of a globally competitive aerospace skills ecosystem. It will bring together more than 30 senior industry leaders, CEOs and policy experts under one roof to deliberate on the establishment of a national सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ भी उठाएंगे।
President of Vietnam, Tho Lam, has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge, but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्यमंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रांस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की है। यात्रा के दौरान श्री मिश्री ने निवेश सहयोग के बारे में संयुक्त अरब अमीरात की निवेश कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी भेंट की।
In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at Ekana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m.
आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन पर ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती के कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले रहे हैं। और श्रोताओं, समय है अब प्रमुख महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो सुभद्रा, क्या समाचार है आपके पास?
यस, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कोयम्बटूर कैरिड आउट एन एनफोर्समेंट सर्च एंड सीजर रेड ऑपरेशन यस्टरडे एट पुदुकोटाई बेस्ड ऑन एन इन्फॉर्मेशन ऑफ सस्पेक्टेड वायोलेशन ऑफ द बीआईएस एक्ट। द ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ बीआईएस ऑफिशियल्स कंप्राइजिंग ए अरिवरगन, जॉइंट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिशियल्स। 654 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वर्थ अप्रोक्सीमेटली रूपीज 92 लाख, which did not bear the hallmark unique identification 6-digit alphanumeric number, were found and exhibited for sale. As gold jewellery must be hallmarked with HUID before being exhibited for sale, the items were seized.
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल पुनर्निर्मित नेहरू प्लेस डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डाकघर अब बैंकिंग और बचत सुविधाओं सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब डाकघरों में बैंकिंग, बचत योजनाएं, आधार सेवाएं, पासपोर्ट सेवाएं और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह नालियों और जलाशयों में लार्वा रोधी दवा का छिड़काव भी हो रहा है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। लोगों से अपील की गई है खुले पानी के बर्तनों को ढककर रखें और टंकियों को अच्छे से बंद करें। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले शाम 7 बजे से आईपीएल मुकाबले के चलते राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि पार्किंग के लिए माता सुंदरी, वेलोड्रोम रोड और राजघाट मार्ग का ही उपयोग करें। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी द्वारा आज से 14 जून तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एनएसडी के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने बताया कि एनएसडी द्वारा आयोजित इस समारोह के लिए रंग प्रेमियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुखर्जी नगर से जीवन रक्षक नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 6 करोड़ रुपए की नकली दवा बरामद की गई है। साथ ही आरोपियों के पास से नकली वैक्सीन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंटी सीरम सहित कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं भी बरामद की गई हैं।
एंड मूविंग टू हैदराबाद नाउ, द हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड a comprehensive safety measures for the outer ring road following a high level coordination meeting held yesterday. Police Commissioner V.C. Sajanar chaired the meeting with senior officials from the Transport Department, HMDA, NHAI, GHMC and other agencies. The ORR witnesses 2.80 lakh vehicles daily, with an average of 5 to 6 accidents happening every day. The Commissioner emphasized proactive prevention rather than reactive response, setting a target of 0 accidents. Key measures include increased CCTV surveillance, enhanced vehicle fitness inspections, special counseling for traffic violators. Safety awareness messages will be sent to commuters' mobile phones upon entering the ORR. Moving to another news from Hyderabad, the Union Minister Kishan Reddy inspected arrangements for Prime Minister Narendra Modi's massive public meeting at Hyderabad's parade grounds scheduled for May 10th. Speaking to media after reviewing preparations, Reddy highlighted the central government's sustained commitment to Telangana's development. The minister noted that approximately 12 lakh crore rupees have been allocated for Telangana's development over the past 12 years. And over to you now, Nikhil, for the next one.
जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र एसएससी की कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। परिणाम results.digilocker.gov.in, mahassbboard.in और sscresults.mkcl.org पर उपलब्ध होंगे। लगभग 16 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नवनिर्मित अंधेरी रेलवे स्टेशन आरएस डाकघर का उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से 1932-33 में स्थापित अंधेरी आरएस डाकघर को जन सेवा कनेक्ट परियोजना के तहत उन्नत बुनियादी ढांचे, बेहतर ग्राहक सुविधाओं और आधुनिक डिजिटल सेवाओं के साथ उन्नत किया गया है। यह नवीनीकरण इंडिया पोस्ट की परंपरा से प्रौद्योगिकी की तरफ जाने वाली यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
And I'm taking you all to Bengaluru now. Karnataka will organize an exclusive job fair for persons with disabilities in August 2026 at Kantirwa Stadium in Bengaluru. Skill Development and Medical Education Minister Dr. Sharana Prakash R. Patil announced this while launching the Adidwara app, an inclusive employment and skilling platform for persons with disabilities at Vikas Saudha. The platform will connect persons with disabilities to job opportunities, internships and skill development programs through AI-based job matching. Karnataka has decided to establish sustainable data parks in Bengaluru, Mysuru and Mangaluru with a combined capacity of 1,000 megawatts. That decision was taken at a meeting attended by Energy Minister K.J. George, Industries Minister M.B. Patil and IT Minister Priyank Kharge. A 500 megawatt data park will be set up near Hoskote in Bengaluru with solar power supply from Pavagada. Land has also been identified in Mangaluru, while suitable land will be selected in Mysuru. The ministers directed officials to make necessary preparations and hold discussions with potential investors soon. We have one more from Bengaluru. The Greater Bengaluru Authority has accelerated stormwater drain works being undertaken under World Bank funding across the city ahead of the monsoon season. Chief Engineer S.V. Rajesh said works worth ₹2,000 crore are in progress to develop and strengthen stormwater drains, including conversion of Kachcha drains into RCC-lined drains. World Bank representatives yesterday inspected the ongoing works at Silk Board Junction, Anjanapura, Gandhinagar and Madiwala Lake.
और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। तो ये थे महानगरों से जुड़े हुए अब तक के प्रमुख समाचार। और सुभद्रा, हम लेते हैं मौसम का हाल। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस तक के रहने के आसार हैं। कोलकाता की बात करें तो वहां आंधी के साथ बारिश की संभावना है, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अन्य महानगरों में आज मौसम कैसा रहेगा सुभद्रा?
हाँ यस निखिल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन ऑफ थंडरस्टॉर्म। मिनिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। The temperature will hover between a minimum of 25 and maximum of 40 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्ने पलटने का, अपने श्रोताओं को उन कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की है। आज 8 मई है और प्रमुख घटनाएं किस प्रकार, इस पर हम बात करते हैं सुभद्रा।
यस एंड टुडे निखिल, बिफोर वी गो टू द हिस्ट्री सेक्शन, वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, अ डे दैट सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड सेल्फलेस सर्विस। दिस ओकेजन कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी ड्यूनंट, whose vision laid the foundation for one of the world's largest humanitarian movements. Across the globe, Red Cross and Red Crescent volunteers continue to serve people in times of disaster, conflict and need, bringing hope where it is needed most. This year's theme is United in Humanity, reminds us that together, through compassion and solidarity, we can build a more caring and resilient world.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये संगठन मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता जैसे सिद्धांतों पर कार्य करता है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो कि हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को थैलेसीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक रक्त बीमारी के प्रति जागरूक करना और रोगियों के प्रति सहयोग तथा संवेदनशीलता को बढ़ाना है। ये एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचती है और इस रोग की वजह से रोगी को एनीमिया, कमजोरी, थकान या फिर कई अन्य तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता रैलियां, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
एंड लेट्स गेट टू सम हिस्ट्री नाउ निखिल
जी।
इन 1360 द ट्रीटी ऑफ ब्रिटनी वाज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड इन 1886, American pharmacist John S. Pemberton developed Coca-Cola, a drink he originally billed as a cure-all tonic.
और श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 1541 में आज के दिन ही हर्नांडो डी सोटो ने मिसिसिपी नदी की खोज की थी और वे ऐसा करने वाले पहले यूरोपीय खोजकर्ताओं में से एक थे।
And in 1624, the Treaty of Vienna was signed between Roman Emperor Ferdinand II and King Bethlen Gabor. And in 1945, Nazi Germany surrendered to the Allied forces, bringing an end to World War II in Europe. And 1962, the era of trolley bus in London ended. These buses were replaced by diesel-fueled buses.
वर्ष 1962 में आज के दिन ही रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी और इससे पहले वर्ष 1933 में आज के दिन ही महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश अत्याचार को समाप्त करने के उद्देश्य से 21 दिन का उपवास शुरू किया था।
एंड वन मोर इम्पोर्टेंट आइटम, दिस इज इन 1980 इट हैपेंड, द वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ द डेडली डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स एट द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। द ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट अचीवमेंट इन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ ऑफ कोर्स।
श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2002 में कराची में एक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द करके स्वदेश वापसी की थी और वर्ष 2004 में आज के दिन ही श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 521 विकेट हासिल करके सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। और अब समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वासुदेव चापेकर की, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के छोटे भाई थे, जिन्हें सामूहिक रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचारों का विरोध किया और आपको बता दें कि 1897 में पुणे में प्लेग फैलने के दौरान ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार से क्रोधित होकर दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने रैंड को मार दिया था। वासुदेव चापेकर ने भी अपने भाइयों का पूरा सहयोग किया और इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी।
And today we remember John Stuart Mill, English philosopher, economist and exponent of utilitarianism. He was prominent as a publicist in a reforming age of the 19th century and remains of lasting interest as a logician and an ethical theorist. He passed away this day in 1873. And friends, today is the death anniversary of Ustad Zia Fariduddin Dagar, a titan of the Hindustani classical tradition of Dhrupad, whose mastery of his art won him an army of fans all over the world. Dhrupad Sansa was started under the Cell for Human Values to create an appreciation about Indian classical arts and culture among staff and students of the institution. And Nikhil, this is so beautiful what he said. Ustad Dagar says, Swar and Ishwar are the same. When you know one and you know the other, there is no religion to divide humanity. We are one and the music is one. And just let's listen to excerpts from one of his interviews.
Sir, Sangeet, no, very thing. Duniya mein teen cheeze aisi hai ki pratyaksh log usko dekh nahi sakte. Ishwar naam ki jo cheez hai, jo kabhi janamta nahi hai, kabhi marta nahi, usko kisi ne nahi dekha, aise swaroop bhi kisi ne nahi dekha. केवल सुन के महसूस करते हैं। स्वर और ईश्वर में कोई अंतर नहीं, जिसने सुरों को समझ लिया वो ईश्वर को भी समझ लेगा, जिसने ईश्वर को समझ लिया वो सुरों को समझ लिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो। आप मानव समझ के आप अपना कार्य कीजिए। मैं मानव हूं, मेरा कर्तव्य क्या है।
आपको बता दें कि जिया फरीदुद्दीन डागर को ध्रुपद परंपरा का एक प्रमुख कलाकार माना जाता है और वे ऐसे घराने से संबंधित रहे जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन परंपराओं को जीवंत करके रखा हुआ है। और आपको बता दें कि 19 पीढ़ियों तक लगातार ध्रुपद गायकी को इस परिवार ने बढ़ाया है। आइए सुनते हैं उनकी गायकी का ये।
And of course, he was awarded the 1994 Sangeet Natak Academy Award, followed by the Padma Shri Award in 2012.
और श्रोताओं को बता दें कि आज पुण्यतिथि है भाई बाल मुकुंद की। वे भारत के महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी थे। देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर के हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। आपको बता दें कि भाई बाल मुकुंद का नाम विशेष रूप से दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ है। 1912 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में उन्हें सहभागी माना गया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर देशद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी की सजा दी गई और आज के दिन 1915 में उन्हें फांसी दी गई थी।
एंड अमेरिकन सिंगर एक्टर वन ऑफ रॉक म्यूजिक्स फर्स्ट टीन आइडल्स रिकी नेल्सन वाज बॉर्न दिस डे इन 1940 हु रिकॉर्डेड हिज फर्स्ट सॉन्ग इन 1957 नेल्सन क्रिएटेड बॉयस्टरस रॉकबिली फ्लेवर्ड रॉक एंड रोल एज वेल एज सम जेंटलर बैलड्स हियर्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ट्रैवलिंग मैन
Senorita waiting for me down in old Mexico. And if you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return.
श्रोताओं को बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है मास्टर अमीर चंद की। वे स्वाधीनता सेनानी थे और लाला हरदयाल के संपर्क से क्रांतिकारी आंदोलन में आए और फिर रास बिहारी बोस के घनिष्ठ सहयोगी बन गए। अमीर चंद के मन में देशभक्ति की मान्यता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान हैदराबाद के बाजार में अपना स्वदेशी स्टोर खोला था और वहां देशभक्तों की तस्वीरें तथा क्रांतिकारी साहित्य बेचा करते थे। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में क्रांतिकारी कार्यों का संयोजन उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में किया, जिसकी वजह से उन पर एक षड्यंत्र का केस चला और अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाकर उन्हें 8 मई को फांसी की सजा दी थी। और आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की। वे प्रसिद्ध इतिहासकार थे और साथ ही एक जाने माने मार्क्सवादी दार्शनिक भी थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन में भौतिकवादी संस्कृति की गवेषणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी रचनाओं की हम बात करें तो भारत और दुनिया के लोग, प्राचीन भारत में विज्ञान और समाज, प्रकृति पदार्थ और परमाणु तथा आधुनिक विश्व का इतिहास जैसी पुस्तकें हैं जो आज भी खूब पसंद की जाती हैं।
And friends, 1926, May 8, happy 100 years to Sir David Attenborough, who has mastered the craft of storytelling. Natural historian, broadcaster and author from Leicester, England, has undoubtedly inspired generations of people around the globe to love and care for the natural world. And in doing so, Attenborough became one of the most recognizable and most trusted faces of our screens. Known for his distinctive voice in pioneering nature documentaries, including Life on Earth, Planet Earth and Blue Planet. That's a lifetime of wildlife filmmaking. He has educated millions on the natural world and become a leading voice for environmental conservation. American blues singer, guitarist, composer Joe Bonamassa celebrates his birthday today. He's played with legends, studied the greats, and carved out a legacy of his own. A blues tune right here, right now, for Joe Bonamassa.
श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है आत्माराम राव जी देशपांडे की। वे मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और समाज शिक्षा विशेषज्ञ, विदर्भ के प्रसिद्ध मराठी कवि के प्रसिद्ध कविता संग्रह की हम बात करते हैं तो फलवाद, भग्नभूर्ति, पीरतवा, सांगाती, दशपदी जैसी रचनाएं हैं। और आपको बता दें कि 1977 में दशपदी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही जयंती है स्वामी चिन्मयानंद की। वे भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक और वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध थे। और आपको बता दें कि पूरे देश में भ्रमण करते हुए उन्होंने कई सारे कार्यों की शुरुआत की और शुद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया था और 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना भी की थी।
एंड बर्थडे ग्रीटिंग्स टू कीथ जैरेट, अमेरिकन जैज एंड क्लासिकल पियानिस्ट, कंपोजर, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अ चाइल्ड प्रोडिजी, जैरेट बिगन स्टडिंग द पियानो एट एज 3, परफॉर्मड हिज फर्स्ट सोलो रिसाइटल एट 7. He worked as a professional musician while in elementary school, also learning to play drums, vibraphone, soprano, saxophone, trumpet, and did not forget the electric guitar too. So fans continue to love those soaring melodies, and you are listening to one already in the background. It's called My Song.
श्रोताओं, आज जयंती है गिरिजा देवी की, जो कि भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं। उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, जो बनारस घराने से संबंधित रही हैं। उनकी कजरी बरसन लगी बहुत प्रसिद्ध हुई थी।
Gireja Devi was awarded the Padma Shri in 1972, Padma Bhushan in 1989, and Padma Vibhushan in 2016.
और श्रोताओं को बता दें कि आज ही जयंती है तपन राय चौधरी की, जो कि जाने माने इतिहासकार थे। और तपन राय चौधरी ब्रिटिश भारतीय विशेषज्ञ, इतिहास, भारतीय आर्थिक इतिहास और बंगाल के इतिहास के विशेषज्ञ थे। 1993 में ऑक्सफोर्ड से सेवानिवृत्त हुए और 2007 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
And Alex Van Halen, drummer, co-founder of rock band Van Halen, celebrates his birthday today. Also, right-arm fast bowler, international cricket and captain Pat Cummins from Australia celebrates his birthday today.
और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है रेमो फर्नांडिस का, जो कि भारत के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार हैं, जिन्हें खासकर हमारे देश में इंडी पॉप और फ्यूजन संगीत के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि रेमो ने भारतीय संगीत में पश्चिमी रॉक, पॉप और भारतीय संगीत का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करके एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने 1980 से 1990 के दशक में अपने ऊर्जावान और अनोखे गीतों से काफी लोकप्रियता हासिल की थी। आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया एक और गीत।
हम्मा, 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 हम्मा,
और श्रोताओं, समय हो रहा है आप सभी से अनुमति लेने का, तो फिर एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति दीजिए निखिल और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
नमस्कार।